फिर यहाँ एक छोटी सी बात फी सबील अल्लाह पे कर देती हूँ कि फी सबील अल्लाह में क्या कुछ आता है, कुछ नाम है हदीसों से हमें पता चलते हैं कि किसकी मौत सबील अल्लाह की मौत है। तो सबसे पहले तो शहीद, जो अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए लड़ा और फिर वापस ना आया, ये तो एक बिल्कुल सरीहन शहादत है ना, जिसको हम सही माने में कह सकते हैं। इसी तरह हज के लिए निकला हुआ शख्स, ये सारी बातें हदीस से आपको बता रही हूँ। हदीस में आता है कि जो घर से निकला हज के लिए, रास्ते में मौत आ गई, हुआ फी सबील अल्लाह, इसीलिए आपको पता है कि उसको फिर वहीं दफन कर दिया जाता है। तीसरा, इल्म के रास्ते में मौत, ये फी सबील अल्लाह मौत है। इल्म के रास्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उस रास्ते पे चला के उसमें इल्म हासिल करे, सखलल्लाहु लहू तरीकल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। आपको अगर आजकल आना मुश्किल लग रहा है ना, तो इसमें आपके लिए जन्नत के रास्ते आसान हो रहे हैं। थोड़ी सी मुश्किलें बर्दाश्त करके देखें, आसानियां हो जाएंगी। आज आप जरा अपने ऊपर तो लें, किसी को दीन पढ़ते पढ़ाते हुए मौत आ जाए, फिर लोगों के क्या कमेंट होंगे उसके बारे में, हाय बेचारी, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, हम पूरे हो जाए रास्ते में, बाद में पता चले जी पढ़ाने जा रहे थे तो फौत हो गए, पढ़ने जा रही थी तो फौत हो गई, लोगों ने आहें भर भर के हमारे घर वालों को रुला रुला के मारना है, गोया कि अगर इधर ना निकलते तो ये बड़े सिक्योर थे। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं कि शहीद का पहला कतरा खून का गिरता है ना जमीन पे, तो इसके गुनाहों की माफी हो जाती है, और इसकी रूह जिस्म से निकलती है कि डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाती है। आम मोमिनों की जो रूह है उसको जन्नत की सैर करवा के वापस कब्र में ले आया जाता है, फिर उसको इलीहीद में रखा जाता है, एक छोटा सा स्टोरेज रूम है। लेकिन शहीद बिल मुशाफे, यानी ऐसे ही फिजिकली जैसे ये ग्लास है आप इसको उठा के जाके दूसरे कमरे में रख दें, शहीद मरते ही डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाता है। शहीद का हिसाब नहीं, उसकी किताब नहीं, उसके लिए अजाबे कब्र नहीं। कब्र से कितना डर लगता है हमें, और शहीद हो जाए आपको कब्र की फीलिंग की कोई नहीं आएगी, इधर मरे उधर का दरवाजा खुला। जैसे आप देखिए कि बाज दफा एयरपोर्ट पे लोग हमें इधर से छोड़ते हैं, लेकिन वो तो छोड़ के निकल जाते हैं और हम बीच में कितने मरहलों से फंसते हैं, फिर कहीं अगले मुल्क में पहुंचते हैं ना, एक दो दिन के सफर से, कहीं सिक्योरिटीज में, कहीं जहाजों में, कहीं लंबी लंबी कतारों में खड़े होके। ये समझ लीजिए आम शख्स है, उसके लिए बीच के अभी बरजख के पर्दे हैं, लेकिन इधर बैठे और उधर निकल आए, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, उसको क्या कहेंगे, वो शहीद है। तो अल्लाह कदर बड़ी करता है। और ये भी याद रखिए कि इनफरादी नेकियां करना बहुत आसान है, घर बैठिए 500 दानों की तस्बीह पकड़ लीजिए, लोग तो आपको चने भी लाके दे देंगे, ये पढ़ के दे दो जरा, दम कर दो बाबा जी, ये कर दो वो कर दो, बहुत आसान होगा। लेकिन फी सबीलिल्लाह के लिए निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। बास दफा वो नेकियां जो तबीयत पर बोझल होती हैं, मसलन दावत तबलीग, इसमें भूख प्यास सहनी पड़ती है, इसको करते वक्त अगर दिल मैला हो तो सोचिए कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल समझा देती हूँ, बात लंबी हो रही है वैसे। 5 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला अगर डॉक्टर बन के प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या कोई मूली गाजर बेचने वाला डॉक्टर बनेगा? सीधी सी बात है, मेडिकल कॉलेज में पढ़े 5 साल 6 साल 10 साल जो भी कर करा के, और उसके बाद कोई जाके तो वहां सब्जी की रेड़ी लगा ले तो हम कहेंगे बेवकूफ, सीट ही तुमने एक जाया की ना, इतने पहले लोगों को दाखला नहीं मिलता, इसकी जगह तो अच्छा था तुम किसी और को दाखला दिलवा देते, ये कहेंगे ना। सेम चीज कोई लॉयर बने 5-10 साल लगाकर फिर वो काम ना करे तो हम कहेंगे बेवकूफ हो। हम कुरान पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह का रास्ता है, और ये कुरान अगर मेरे दिल को नहीं पिघलाएगा तो वो बेचारे बाहर वालों को पिघलाएगा जो इस वक्त शॉपिंग्स कर रहे हैं सेल्स में और घर भर रहे हैं दोबारा कि सेले लग गई। ऐसी है, वो करेंगे दीन का काम, वो कहेंगे हम फीस भी लिल्ला मर जाएं बाजारों में। ये तड़प मेरे और आपके अंदर आनी चाहिए, इसलिए जो लोग कुरान के साथ जुड़ जाते हैं ना, कह लीजिए कि वो ऐसे ही जैसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले कभी ना कभी तो डॉक्टर बनेंगे। इस तरह इस कुरान के सफर में अगर मैं और आप मुजाहिद फी सबीलिल्लाह नहीं बने, कुतिल तुम और मुत तुम और फी सबीलिल्लाह और ये वो, तो याद रखिए कि लमग़फ़िरतु मिनल्लाहि व रहमतुन वाली बात सच्ची नहीं होगी। अल्लाह हमारे तो पिछले ही गुनाह माफ कर दे, तो हम इस पे बहुत ज्यादा खुशियां मना लें, कहाँ हम आगे अल्लाह ताला से कुछ और करें। और अल्लाह कहते हैं खैरु मिम्मा यजमाउन, उससे बहुत बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। क्या जमा करते हैं लोग, देखा करें जरा, जब घर क्लियर होते हैं, जो अंदर से उल्टी पुल्टी चीजें जो लाते हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो कसरत से एक चीज के नीचे दबी होने की वजह से ऐसे पुरानी होके निकलती हैं। अल्लाह कहते हैं क्या करना है, दावतें पसंद है, पार्टीज पसंद है, ड्रेसअप होना पसंद है, अल्लाह तुम्हें किसी चीज से नहीं रोकता, अल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं लेता। आप सोचिए कि जिन्होंने दुनिया में फन प्लेक्स बना ली, दुनिया आखिरत में क्या करेंगे, फिर वहां रोना। क्या ये अकलमंदी है कि 4 दिन की दुनिया के लिए हमेशा की आखिरत को तबाह कर ले, या फिर अकलमंद वो है कि जिसने यहां हक के साथ बस गुजारा कर लो, नेमते हैं उसको इस्तेमाल कर लो, असल आगे के लिए छोड़ दो, फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंसान को सच्ची खुशियां मिलेगी। पीछे मुनाफिकत की बात थी ना, निफाक वाले लोगों की कहानियां, यहाँ अल्लाह ताला उसका तोड़ दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हें क्या पता इनको क्या मिलता है। अल्लाह की जात जो शहरक से करीब है, जो दिल की एक एक धड़कन को सुनती है, उसको पता है कि किसको अल्लाह के रास्ते में कितनी तकलीफें आती हैं और वो उस पर खुश कितना होता है। ये तो बहुत आसान है कि तकलीफ आई तो दुखी बनना, मुश्किल क्या है कि तकलीफ आए तो खुशी का इजहार करना। इसलिए आज से अपने लिए अमल की बात नोट करना चाहें तो जरूर करें, मैंने कभी किसी को अपने हालात की खराबी नहीं बतानी। किस एंगल में बीमार है, होते हैं, सब होते हैं, कौन नहीं है बीमार, आप जरा किसी का हाल तो पूछे, मैं तो डरती हूँ यकीन करें, और 40-50 से ऊपर वालों का हाल पूछते हुए, अल्लाह की पनाह, इधर दर्द, ऐथे पीड़, ऐथे पीड़, ये नहीं ठीक, वो नहीं, सिर च दर्द, वैसे अल्लाह का शुक्र है, कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी नहीं है। एक दफा एक सहाबी थे, मुझे नाम अब याद नहीं, बीमार थे, कोई हाल पूछने गया है आदत के लिए, या इमाम थे कोई, या सहाबी थे, बारह कोई नेक शख्स थे, तो किसी ने उनका हाल पूछा, उन्होंने क्या हाल है जी आपका, कहने शुक्र है अल्लाह का, कहा नहीं फिर कैसा हाल है, तबीयत कैसी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं जरा कुछ और भी बताए, कहने लगे जो बात मैं तुम्हें नहीं कहना चाहता मुझसे क्यों गलवाते हो, तुम्हें तसल्ली तभी होगी ना जब कहूंगा कि बड़ा बीमार हूं। तो फिर जो हमारे जाते हैं वो पूरे डॉक्टर बन के जाते हैं, फिर नुस्खे बताएंगे, वो खाया तो वो लिया तो वो एक हकीम का इलाज है, वो देसी इलाज है, वो टोटका है, वो वहां एक डॉक्टर, पूरा वो ये कराते हैं, कभी नहीं उनको बताते कि इस बीमारी में अल्लाह ने आपके लिए कितनी खैर रखी है कि तुम इसके नतीजे में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मंगवा लो। तो यहाँ पे एक मौजू पूरा हुआ हमारे सबक का। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, अच्छे लीडर की क्वालिटीज। हर एक के दिल में ख्वाहिश बहुत होती है लीडर बनने की, लेकिन लीडरशिप के दर्जे पे पहुंच जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन रखना, उसको कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। पिछली आयत के साथ रब पहले ही जोड़ ले आयत के पढ़ने से कि जब गजवे उहद में सहाबा से गलती हुई, जाहिर है 30-35 सहाबा जगह छोड़ गए, जंग भी खत्म हो गई, 70 लोग मारे भी गए, तो दिल में क्या आया होगा कि अब लगनी है हमारे खूब मजा आना है, अब हमारी शामत आनी है भाई, जंग में तो नहीं अल्लाह के नबी ने डांटना था ना कि आपके किसी बच्चे की किसी गलती की वजह से दूसरों के सामने आपका अच्छा वाला नुकसान हो जाए, तो आप भी उसको चुपके से कह रहे होते हैं जरा मेहमानों को जाने दो, फिर देखती हूँ तुम्हारे साथ क्या होता है, बच्चे भी तभी मेहमानों के जाते जाके बिस्तर में सो जाते हैं, वो वाहे दिन होता है जिसमें बच्चे वक्त पे सो जाए आपकी डांट खाए बगैर, क्योंकि उनको पता है कि अभी अम्मा ने जूता उठा लेना कि बेटा वो क्या किया था, पता है ना। तो जब बंदे ने कोई गलती की होती है ना तो उसको खौफ होता है, जिसने नहीं किया तो उसको कोई खौफ नहीं होता। तो सहाबा को खदशा लाहक हुआ कि हमारी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान, और नुकसान तो चले नुकसान है, जज्बाती नुकसान, नबी का अपना जिस्म जख्मी, आपका चचा जख्मी, तो खौफ पैदा हो गया कि पता नहीं अब अल्लाह के नबी का जंग के बाद रवैया क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने पहले ही नबी को जहनी तौर पे तैयार कर दिया कि देखो इनसे सख्ती नहीं करना। मैं इस बात को पढ़ने लगी हूँ तो मुझे ऐसा मंजर जहन में आ रहा है कि जैसे अक्लमंद सासें जो होती हैं ना, तो बहू बेटा जब साथ ही रहें और किसी बात पे माँ देखती है ना बेटे को गुस्सा आया हुआ है, तो माँ पहले ही बच्चे को कह देती है खबरदार अब कमरे में जाके उसको कुछ नहीं कहना, खबरदार उसको नहीं डांटना, समझा देती है ना, या बाप को बड़ा गुस्सा आया हो कभी बच्चे पे तो अकलमंद माएँ जो होती हैं वो फिर बाप को पहले कूल डाउन कर देती हैं, ये तो हम इंसान हैं, लेकिन आसमान से अल्लाह अपने नबी को पहले से ही कह रहे हैं, देखो 30-35 को कुछ नहीं कहना जो दरा छोड़ गए थे, क्योंकि फबिमा रहमत मिन अल्लाह लिंत लहुम, ए नबी ये तो अल्लाह की रहमत है कि आप इनके हक में बहुत नरम हैं, पहले ही कह दिया यू आर सो सॉफ्ट, इसलिए इनको कुछ ना कहना। वलो कुंत फज्जन खलीजल कल्बी लनफद्दू मिन हौलिक, और अगर आप तुंदखू और सख्त दिल होते तो ये आप गिर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते। यहाँ लफ्ज़ देखिएगा, लिंता का जो लफ्ज़ आया ये लाना या लीनू से है, लाम या नून इसका रूट है, गलती ना खाइएगा, ता इसमें मुअन्नस की है। लीन, लीना कहते हैं खजूर के नए तने को, कच्ची खजूरें खाई हैं कभी डोके, इस तरह जब कच्ची कच्ची खजूरें निकलती है ना तो नरम होती है, उसमें गुठली भी नहीं अभी होती, तो बिल्कुल जो नया सा खजूर का एक खोशा होता है ना उसको लीना कहते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए दूसरा लफ्ज इसमें जो आ रहा है लिनता लहुम के बाद वो क्या है, गलीज अल कल्ब। अच्छा ये लीनना का लफ्ज आपने कभी तजवीद में सुना, हरूफ लीन को नरम पढ़ते हैं ना, ई वाले जो ई आई यानी अलिफ के बाद जो आ जाए यानी जिसको थोड़ा सा टेढ़ा पढ़ते हैं तो भी यही लफ्ज है, ठीक है। तो आप लिनते वलो कुन तो फजन, फजन का लफ्ज देखिए फा ज्वा, अंतड़ियों के अंदर जो गंदा पानी होता है उसको फज कहते हैं। ओजड़ी देखिए कभी, ओजड़ी के अंदर जो बदबूदार किस्म का गंदा मादा निकलता है ना उसको फज कहते हैं। यहाँ आप देखिए कि बद अखलाकी को अल्लाह ताला कितनी कबीह चीज से तशबीह देते हैं, कह नबी अगर आप बद अखलाक होते, रूड होते, अग्रेसिव होते, एटीट्यूड वाले होते तो फिर आपका हाल क्या होता, कि फज होते, बदखुल की गंदगी, गलीज़ अल कल्ब उसका अगला दर्जा, गलज़ा यगलीज़ु तगलीज़ कहते हैं गाढ़े होने को, थिक होने को। उर्दू में तो हम एक लफ्ज़ गलीज़ गाली के तौर पे भी बोलते हैं ना, अरबी में गलीज़ का लफ्ज़ गाली नहीं है, बस सख्त को कहते हैं यानी थिकनेस। जैसे मिसाल है कि आप आटे को दूध में घोलते हैं केक बनाने के लिए कुछ भी, तो नरम है ना, लेकिन जितना ज़्यादा आप उसमें फ्लावर डालते जाएंगे वो थिक होगा ना, तो थिकनेस को गलाजत कहते हैं, और अलकल्ब दिल को कहते हैं। सबसे पहला दर्जा लीन नरम, दूसरा फज़न ये दूसरा दर्जा होता है, फिर तीसरा गलीज़ अलकल्ब दिल की सख्ती, सख्त दिल, कठोर, तुंद मिजाज, वो दिल जिसके अंदर किसी के लिए नरमी आ ही नहीं सकती। अगर ए नबी आपका किरदार ऐसा होता तो लन फद्दू मिन हौलिक, कब के ये सहाबी आपसे बिखर बिखर चुके होते। फज्जू का लफ्ज़ क्या है, फा दुआ दाद, फिज्जा कहते हैं चांदी को, पत्रियाँ, छोटी छोटी पत्रियाँ होती हैं ना, आप इसको यूं सोचिए जैसे सितारे, कभी मोती सितारे लोग घर में लगाते थे, तो आप देखिए कि वो पतले से पतले पतले सितारे हैं ना, अगर आप उसको रखें और जरा सी हवा भी चले ना तो सारे उड़ जाते हैं, ये है फज्जू। सोने में जाहबा जाना तो चांदी में फिज्जा, तो यहाँ लन फद्दू का मतलब ये कि ये आपसे बिखर जाते, स्कैटर्ड के मानों में, यानी आपके साथ इतनी मोहब्बत से सुबह शाम रात दिन ना रहते अगर आप गंदे अखलाक के होते, लोग जो हैं वो आपके साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि आपका अखलाक बड़ा खूबसूरत है, बद जुबान, सख्त मिजाज, तुंद खू, बातें करने वाले ना होते, लिहाजा फाफू अनहुम, बस आप इनसे दरगुजर कीजिए, जाने दीजिए, इनको ना डांटिएगा कि दरा क्यों छोड़ा था, कोई बात नहीं ये घर से तो निकले थे ना। मैं इस आयत को पढ़ रही हूँ तो मुझे वो साथी याद आते हैं कि जो दिन रात काम भी करते हैं और माफियां भी मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत ऐसी सिस्टर्स की कि दिन रात अल्लाह के रास्तों में लगी हुई है, और जब ईमेल या मैसेज या बात हक नहीं अदा हो रहा, ठीक नहीं कर रहे, माफ कर दे, फॉर गिव अस दिस दिस, कि इंसान शर्म से पानी पानी हो जाता है कि इतना काम करके भी दिल में ये कैफियत है इनकी कि हम नहीं कर रहे, तो मैं उनको हमेशा एक ही बात समझाती हूँ, कभी किसी से गलती भी हो सकती है, हमसे इतनी होती है तो किसी से कोई एक आधी होगी तो क्या बात है, मैं कहती हूँ देखिए अल्लाह ने आपको तौफीक तो दी ना, जो काम करता है वही तो गलतियां करता है, ये तो ऐसे ही जैसे हम अपनी मासी से कि मेरे से तो आज तक एक बर्तन भी नहीं टूटा, तो अगर जरा मुंह जोर होती तो कहती बाजी आपने धोया कब है आज तक, जो बर्तन धोएगा उसी से टूटेगा ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, अगर ये दीन के काम के लिए निकल तो पड़े, ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने इनको तौफीक दी है। नहीं सही हो रहा काम, कोई बड़ी बात नहीं, कर तो फिर भी रहे। अल्लाह ने कोई हमसे करवाना है काम? हम जैसे लोग दीन का काम करते तो दीन कब का खत्म हो चुका होता। हम तो बस अपने छोटे छोटे हाथों से सहारा देने की कोशिशों में है। लेकिन एक अच्छे शख्स, एक अच्छे दाई और एक साहिब अमर का इखलाक क्या होना चाहिए साथियों से, वो इन आयतों में समझ आ रहा है। बड़ी अहम आयत है ये, खास तौर पे इज्तमाई जिंदगी की, जहां इंसान किसी जगह जुड़े और खास तौर पे फिर जब दीन के लिए जुड़े। इस्लाम का मिजाज समझ लीजिए, एक लीडर होता है, बाकी सारे फॉलोअर्स होते हैं। जैसे तौहीद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह, तो दुनिया चल रही है। इसी तरह किसी भी घर, जमात, गिरोह, ऑर्गेनाइजेशन में लीडर एक ही होता है। अब वो लीडरशिप कोई वोटिंग पे नहीं होती, ना विरासत से होती है कि बाप के बाद उसका बेटा। खूब अकल समझ के साथ किसी एक शख्स को जब चुन लिया जाए तो उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट और उसके साथ रहने वालों की जो हद बंदी है, वो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ लीडर्स को, कोई भी लीडर है, उसको सामने रखते हुए बता रहे हैं कि उसमें खूबियां क्या होनी चाहिए। देखिए, ये उसकी पर्सनैलिटी है, रूल्स नहीं ब्रेक करने। बस आप देखिए कि आप दीन का काम करते हैं, आपके साथ टीम भी तो होगी ना, 8-10 लोग आपकी टीम में। क्या ये मुमकिन है कि आपको फरिश्तों की टीम मिल जाए, सिन लेस पीपल मिल जाए? जैसे वो स्पॉट फ्री होते हैं, इस तरह सिंस फ्री लोग मिले। कोई कहता है ना कि बस मैं तो सिर्फ मुत्तकी लोगों को अपने साथ रखूंगी और सिर्फ मुजाहिदीन और मोहसिनीन मेरे साथ रहेंगे, तो वो सिर्फ अकेला होगा, बल्कि वो खुद भी नहीं कर सकता ये काम। आज मुसलमानों में एक परसेप्शन है कुछ लोगों में, और वो क्या है, वो कहते हैं कि दीन लोगों को सिखाने या दीन का काम करने से पहले खुद तकवा के दर्जे के आखिरी दर्जे पे पहुंचो, फिर बात बताओ। तो ये बताइए, इस तहत तो फिर जो बंदा भी इस क्वालिटी पे आएगा, फिर उसको तो आपने लिख के सर्टिफिकेट दे दिया कि ये मुत्तकी है, हालांकि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि किसी का तकवा क्या है। पता क्या चला कि खामियों के साथ लोगों को कबूल करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों पे लें इसको, आपका दिल भी चाहता है ना कि आपके बच्चे अली और हजरत अली के बच्चों हसन और हुसैन की तरह हों, आपके बच्चे ईसा जैसे हों, यहया जैसे हों, लेकिन फिर भी याद रखिए कि उनमें गलतियां होंगी। ये कभी नहीं हो सकता। अगर कोई मर्द कहता है मैंने ऐसी औरत से शादी करनी है जिसमें कोई खराबी ना हो, वो बूढ़ा हो जाएगा, शादी नहीं उसकी होगी। कोई औरत, कोई लड़की ये कहती है कि मैंने ऐसी जगह शादी करनी है जिस मर्द में कोई खराबी ना हो, तो वो तनहा रह जाएगी। इंसान मुरक्कब है निस्यान का और खता का, कमियां तो होंगी। दीन का काम करने वाले भी इंसान होते हैं, उनके साथ जो रहते हैं, जो बच्चे घर वाले, वो भी इंसान होते हैं। बस दफा लोग ये ताना बड़ा देते हैं, देखो दूसरों को पढ़ाते हैं, जरा उनके अपने बच्चे देखो, दूसरों को तो इतनी बातें बताते हैं, जरा अपने घर वालों का हाल देखो। भाई अल्लाह के बंदो, जो दूसरों को बताता है कि वो अपने घर वालों को नहीं बताता होगा, क्या हजरत नूह ने कमी की होगी कनान को कुछ सिखाने में? लेकिन नूह के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया ना। तो लिहाजा इंसानों को इंसान समझना चाहिए, गलतियां होंगी, जज्बात हैं, सास आते हैं। यहाँ बताया कि देखो उनकी इज्जत नफ्स को मजरू ना करो, नरमी करो। अब नरमी का ये भी नहीं मतलब कि डिसिप्लिन नहीं रखो। मिसाल देती हूँ कि अब आप साथी सब इधर है, अब आप में से कुछ लोगों को कह दिया जाता है कि आप ग्रुप ले लें, तो आप कहते हैं कि लिनता लहुम, मैं इसलिए सबक ही नहीं सुनते इनका, हाय बेचारे। आप टेस्ट चेक करती हैं, किसी एक सिस्टर को टेस्ट चेकिंग की जिम्मेदारी है, वो कहती है हाय ये तो बड़ी ज्यादती है, मैं इनके नंबर काट लूं, और अल्लाह तो कहता है फबी रम्मा रहमत मिन अल्लाह लिन तलब, कुछ भी नहीं लिखा, पूरे नंबर दे दो। ये मतलब है नरमी का? ये मतलब नहीं है। नरमी जुबान की है। बस लोग जुबान की नरमी पे बात करते हुए बिल्कुल तकल्लुफात पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, ये क्यों, वो क्यों, नरम बात कैसे, आसान बात कैसे, यानी इस तरह के लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा हमेशा एक जवाब होता है कि जुबान को नरम करना है ना, तो दिल को नरम कर लो। लिख लें ये जुमला, जिसका दिल नरम होगा उसकी जुबान नरम होगी। कठोर दिल वाले कभी नरम बात नहीं करेंगे, वो करेंगे ना तो चापलूस लगेंगे, दिल साथ नहीं है लेकिन ऊपर से तारीफें कर रहे हैं। और एक लीडर जब तुंदखू हो जाता है ना, सख्त दिल होता है, तो लोग उसके साथ नहीं रहते। वो एक शेर भी है ना कि कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमान हरम से, कि अमीरे कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। यानी जब अमीर, लीडर, सरदार, जो भी बड़ा है, इंचार्ज, उसके अंदर नरमी और गुदास नहीं होता ना, दर्दमंदी, मोहब्बत, तो लोग उस काफले को छोड़ जाते हैं। हरम में भी जाके लोग बदगुमान हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा लीडर इतना अहम होता है। तो हमेशा नरमीला है। अगर आप माँ बनती हैं तो नरम माँ बने, बीवी हैं तो नरम बीवी बने, उस्ताद हैं तो नरमी के साथ। नरमी का मतलब रूल्स को ब्रेक करना हरगिज नहीं है। ये बात आगे जाके आपको सूरत अल फतह में समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आज से नियत करें, मैंने अपनी जुबान को कैंची नहीं बनाना, छुरी नहीं बनाना, तीर तलवार नहीं बनाना। और आप सोचिए कि जितना कोई चीज नाजुक होती है ना, उसको केयरफुल यूज करना होता है। बस आप देखिए कि तेज छुरी जिससे गोश्त काटा जाता है, बिल्कुल आप लगाएं, जैसे बड़ी बड़ी छुरियां जहन में आती है ना, गाय या ऊंट काटा जाता है, अगर आप उस छुरी से बोनलेस फिश का पीस काटेंगे ना, तो आप देखिएगा वो सारी कट जाएगी, जाया हो जाएगी। और आप उससे धागा काटने लगे तो हो सकता है उंगली कट जाए। तो जब हम सख्त बात करते हैं, तो अब इसको जरा अपने से नीचों पे ले आए, नौकरों के दिल पे क्या गुजरती होगी, हमारी मेड्स, मासियां, जो सारा दिन मशीन बन के काम करती हैं, जब हमारी जुबान से फिर इस तरह के अंगारे उबलते, तो उनका दिल नहीं कटता होगा। और सोचिए जब ये छुरी हमारे मासूम बच्चों के दिल पे चलती है, तो क्या होता होगा। वैसे तुम पसंद नहीं करते कि हमारे बच्चे को एक कट भी लगे, चाहती है कोई माँ? माँ के दिल पे कट लगता है जो बच्चे की उंगली पे लगता है। लेकिन हम बाज दफा सारे क्रजिस और सारे गुस्से अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, इसी तरह शौहर पे, जो सुनता है। जैसे पानी जिधर हल्का रंग हो उधर चल पड़ता है ना, हम सबका गुस्सा दिल में पालते हैं, सबका। जो भी है बीमार है तो भी गुस्सा जाहिर आता है, जो भी तकलीफ है, पैसे नहीं, माल नहीं, ससुराल, सास ने कुछ कह दिया, नन ने कह दिया, बहू ने कह दिया, मियाँ कुछ कह गए, पकड़ के जाके एक थप्पड़ मार आते हैं बच्चे को। तुम तो मेरी सुनते हो ना, रियली। बस माए मैंने यकीन करे खुद देखा है, दूध पीते बच्चों को थप्पड़ मारती हैं। आप वहां कर रहे हैं, जब आपका रोता होगा तो आप भी मारती हो, कितनी करूं क्या, सुबह से रो रहा है। तो भाई ये मासूम एक 6 महीने का बच्चा, साल का, क्या आपके इस थप्पड़ से माने, फिर वो और रोता है, फिर वो गुस्से में और दूध नहीं पीता। बच्चा दूध नहीं पीता, माँ थप्पड़ मारती। आप सोचिए तो सही, नरमी बहुत बड़ी नेमत है। हदीस में आता है कि अल्लाह ने जिसको नरमी दी उसको बहुत बड़ी नेमत दे दी, और नरमी हमेशा खैर लाती है। आप देखिए ना कि कुछ चीजें सख्त हाथों से होती हैं तो कुछ नरम हाथों से होती हैं। एक है कि आपकी पतीली जल गई, दूध जल गया उसके नीचे, आप उसको किससे साफ करेंगे? आप उसको स्क्रब से साफ करेंगे ना, वो जो स्टील वूल होती है, कुछ भी। हाथ आपका अपना भी जख्मी हो जाता है, लेकिन आप उसको डालते हैं ताकि पतीली साफ हो जाए। लेकिन एक डॉक्टर ने किसी के स्किन पे लगे हुए जख्म साफ करने हो तो कैसे करेगा? स्टील वूल से करेगा? नहीं, वो हाथ पे रुई लपेट के बड़े प्यार से साफ करेगा, तो देखे क्या साफ करता है। बस दफा हम अपनी इस्लाम में बड़े नेक बन रहे होते हैं हम नेक, कोई शक भी नहीं, लेकिन दूसरे के जख्म धोने नहीं आते, छील के रख देते। फिर अगला कहता है अब तो मैं और बुरा बन के दिखाऊंगा, पहले तो बुरा था, बन के दिखाऊंगा। तो ये नबी की वो खूबियां थी, इस पे बहुत अर्ज़ी हैं। अभी रबीउल अव्वल चल रहा है, आपको मैं दावत दूंगी अगर आप पे बोझ ना पड़े। रबीउल अव्वल का वेब पेज जो है, वेब मेन पेज पे भी होगा, और मेरा हाल 1432 का जो पेज है उसमें मैंने काफ़ी लेक्चर नए देखे हैं। तो आप एक एक करके नबी के बारे में सुने। इस आयत पे मैंने बहुत अर्ज़ी है कि नबी थे कौन। आप उनकी सिर्फ नरमी की बातें पढ़ लेना तो इंसान को यकीन नहीं आता कि इस शख्स ने कभी किसी के ऊपर सख्ती भी की होगी। कभी किसी मुलाजिम को नहीं मारा, कभी बीवी पे हाथ नहीं उठाया, कभी बीवियों को कुछ कहा नहीं। कल मैं पढ़ रही थी अल्लाह के नबी की आदत, तो कभी नहीं कहा कि मुझे खाना दे दो, कुछ दे देता तो खा लेना, नहीं खाना पसंद है, कभी नहीं कहा ये क्या पकाया है, क्या है, कुछ नहीं। खुद खा के देखो तो पता चल सकता है कि हो सकता है कि नमक की जगह चीनी या चीनी की जगह नमक पड़ गया, आप नहीं बोलते थे। कितने गट्स की बात है। आज उम्मत के मर्द देखिए, जरा जरा नमक चीनी कम हो गई तो बीवी को ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे शायद हमने कोई खरीद के लेके आए हैं लॉन्डी को। ये वो चीजें हैं कि जो मुसलमानों को आज अपनाने की जरूरत है। हत्ता के कहा कि फाफ वनहुम, दरगुजर कीजिए। इतनी बड़ी गलती सहाबा की, 70 लोग मारे गए, मुसलमानों को चोट पड़ी, उनकी साख बिखर गई। ठीक है, वो शिकस्त नहीं हुई जो हो सकती थी, लेकिन बदर की फतह की हवा तो निकल गई और इसका असर आगे हुआ। हौसले बुलंद हुए लोगों का, बदर तो ऐसे इत्तफाकन जीत गए थे, कोई दमखम नहीं है इन मुसलमानों में। लेकिन इसके बावजूद देखिए, आपको कहा गया कि दिल में मैल भी ना लाइए। इनकी गलती और कोताही को जब अल्लाह ने माफ कर दिया, तो आप क्यों नहीं करते? माफ करें, बल्कि वस्तग़फिर लहुम। अगला दर्जा देखिएगा आप, बल्कि ना सिर्फ ये कि आपने इनको कुछ नहीं कहना, बल्कि जो इनसे गलती हुई उसके ऊपर अब आप अल्लाह से इनके लिए माफी मांगे। ये है खूबसूरत नुक्ता। आपके बच्चे आपका दिल तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, मैं मानती हूँ। बड़े जवान बच्चे तो ज्यादा तोड़ते हैं। अगर अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो बड़ी खुशकिस्मत है, वो छोटे चरके लगाते हैं। जो जो बच्चे बड़े होते जाते हैं आज के दौर में, वो गम भी बड़े हो जाते हैं, उनकी जुबान भी आपसे लंबी हो जाती है। ऐसा होता है, दुख तो होता है। तो जब आपका बच्चा आपको दुखाए, तो फौरन उसके लिए दुआ करें, अल्लाह इसको ना पकड़ना, वस्तग़फिर लहू, अल्लाह ये माँ के साथ बोल रहा है ऐसे, इसको ऐसे ना करना। कैसे फिर इन बच्चों को, बिगड़े वो को, बिखरे वो को अपने पास लाएं? वशाविर हुम फिल अम्र, कम्युनिकेशन करो और मामलात में इनसे मशवरा लेते रहो। उधर तो नबी को कहा गया कि देखो अब ऐसा ना हो कि अगली किसी मीटिंग में इनको ना बुलाओ, क्योंकि देखिए गज़वे उहद से पहले मशवरा हुआ था ना कि जंग शहर से बाहर हो या शहर में हो। कुछ ने कहा बाहर हो, कुछ ने कहा अंदर हो, जंग हो गई बाहर। तो अब चांसेस थे ना कि बाद में जाके वो लोग जिन्होंने कहा था शहर में हो, वो एक दूसरे को ताने देते। और होता है ये कच्ची जमात जो होती है ना, यानी लूज टीम जो होती है, उन साथियों में ये बड़ी बुरी आदत होती है, मीटिंग में कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में जरा सा उठ के, मैंने तो पहले कहा था, मैंने तो पहले, हमारी मानी नहीं। तो ये बहुत बड़ी इंसान की गलती होती है कि इज्तमाई काम में जब कोई नुकसान हो ना, तो खुद को अलग कर लेना। हाँ भाई, हम सबकी वजह से हुआ है, लेकिन ये कहना नहीं नहीं हम नहीं करते। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि इनसे फ्यूचर में भी मशवरे करते रहिए। फइजा अजमत फतवक्कल अल्लाह, ये है आपको डिसीजन मैनेजमेंट सिखाई जा रही है। मशवरा पहले लोगों से करें, आपने कोई काम करना है ना, मशवरा करें, क्या ख्याल है आसपास, ये कर ले, क्या ख्याल है। ये आम जाती मशवरा है, लेकिन आम मशवरा क्या है, मीटिंग रखें, आपकी मशवरा, आप सब ये कर करा के, ये है शाविर हूँ फिल अमरी। यानी ये सवाल पैदा होता है ना कि हम अपने मामले कैसे करें, तो इस तरह से करें, पहले लोगों से मशवरा करें, फिर फैजा अजमता, ये क्या है, अजम कब होता है, इस्तखारा करें, पहले मखलूक से मशवरे कर लें, फिर अल्लाह से करें। इस्तखारे के बाद किसी से मशवरा ना करें। हम बाज दफा सासा इस्तखारे भी, सास दफा मशवरे भी, एक उधर मशवरा, एक उधर मशवरा, वो एक पे खुद ही नहीं समझ पाते। तो बहरहाल ये तरतीब है, जब आपने किसी काम के करने का इरादा कर लिया, तो फिर फतवक्कल अल्लाह, अब अल्लाह पर तवक्कुल करें, ये है तरतीब। अल्लाह के नबी ने जब भी किसी काम को ओके कह दिया ना, फिर कभी उसको नो नहीं किया, ना कभी कोई काम पोस्टपोन किया और ना आपने कभी किसी काम को कैंसिल किया। हो गई बात तो हो गई। मशवरे के बाद जब आपका दिल किसी राय पे मुतमईन हो गया, एक फैसला कर लिया, तो अब लोग कुछ भी कहें, अब किसी शख्स की बात पर परवाह ना करें, सारा तवक्कुल अल्लाह पे। छोटे छोटे मामलात में साथियों की ये बातें नहीं महसूस होती, लेकिन जितनी वो जैसे जूम इन और जूम आउट तस्वीर बड़ी छोटी करते जाते हैं ना, उसके ऐब और नक्स दिखते हैं छोटे फैसलों में। कोई कहता है ना, नहीं मेरा यही ख्याल था, फर्क नहीं पड़ता। बाद दफा बड़े फैसले, यानी ये सारे तजुर्बे किए होते हैं हम लोगों ने कि कभी इस तरह के मामले हैं, बाद में हमने तो पहले ही कहा था ये नहीं लेनी चाहिए जगह, हमें तो पहले ही पता था ये नहीं होगा। जब वो कश्ती डोले और कोई बंदा ये जुमला बोले कि मैंने पहले ही कहा था, यकीन करें उसको प्यार से अपनी टीम से निकाल दें। बुरा ना कहें उसको, उसको कहें कुछ कहें ना, लेकिन आप उसको उस मुकाम से थोड़ा नीचे रख के उसको मशवरों में ना करें। एक बंदा नेगेटिव सोच का आपकी टीम में आ जाता है ना, सारी टीम टूट जाती है, क्योंकि फिर वो आपका नहीं है, वो अपने नफ्स का है। टीम वर्क में बंदे को बिल्कुल एक स्मूदी की शक्ल में पेश होना पड़ता है, ब्लेंडर में डाल के सब छोटे बड़े एक बराबर, किसी का नाम नहीं आता। लोग हमेशा यही कहते हैं पाकिस्तान जीता, ये नहीं कहता कि फलां शख्स जीता, हालांकि छक्का आखिर में एक ही शख्स लगाता है, लेकिन जीता पाकिस्तान है ना। बिल्कुल, टीम वर्क में फतह हो या शिकस्त हो, वो पूरी टीम और पूरे ग्रुप की होती है। तो बहरहाल, ये अभी हम इस लेवल पे तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम इन आयात को टीम वर्क पे बहुत लेते हैं, और जब ट्रेनिंग सेशंस वगैरह होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फेवरेट मोस्ट आयत है मेरी, इस सेंस में कि तरबियत कैसी हो, कैसा ग्रुप अल्लाह के नबी ने तैयार किया कि जो हकीकत में खैर ख्वाह थे और जो वाकई उस कॉज से इतने सच्चे थे कि अगर इस रास्ते में कोई मुश्किल आ भी जाती थी तो सारी चोट अपनी जान पे ले लेते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला को तवक्कुल वाले लोग बड़े पसंद हैं, और तवक्कुल उस वक्त भी जबकि 70 लोग मारे गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया, अपने साथियों के साथ थे। ग़ज़वे उहद से पहले जब मशवरा किया, लोगों ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आप हज़रत आयशा के घर में थे, आपने ज़िरह पहनी और हथियार लगाए, लोगों को महसूस हुआ कि अल्लाह के नबी खुश नहीं है, यानी कहा जा रहा है बाहर जाएं, लेकिन अल्लाह के नबी तैयार होकर बाहर निकल तो आए, लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं। तो जिन साथियों का ये मशवरा था कि बाहर जाके जंग लड़े, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हम अपनी राय वापस लेते हैं, आप जो चाहें करें, हम जंग इधर ही लड़ेंगे। तो फिर आपने फरमाया कि नहीं, जब एक फैसला कर दिया तो नबी जब हथियार पहन लेते हैं तो उनको लायक ही नहीं कि वो हथियार फिर छोड़ दे, और आप गए और आपने फिर किया, और फिर जो भी हुआ उस पर राजी रहना चाहिए। बाकी रह गई बात, ये सारी खूबियां जो बयान हो गई, इसके अलावा कि ऐसी खूबियों वाले लोग लीडर बनते हैं और ऐसे लोगों की वजह से ग्रुप कामयाब होते हैं, ऐसे लोग जोड़ लेते हैं। देखिए, एक लीडर जो होता है ना, मेरी नजर में गम है, गम समझते हैं, श्विंगम तो समझते हैं ना, यानी लोगों को जोड़ने वाला एक सोल्यूशन होता है। एक लीडर अच्छा होता है ना तो बिखरी हुई भीड़ जमा हो जाती है, और अल्लाह उनको इतना ऑर्गेनाइज ग्रुप बना देता है कि सबकी खूबियां निखरती हैं, और जहां लीडरशिप कमजोर होगी वहां सभी लीडर होते हैं। जहां लीडर अच्छे नहीं होंगे ना, हर बंदा लीडर होगा, और जहां लीडर स्ट्रांग होगा, इस वक्त उम्मत के पास बेहतरीन लोग हैं लेकिन लीडर नहीं है, है कोई तो छुपा हुआ है, अल्लाह ताला अपने वक्त पे उसको निकालेगा, लेकिन जरूरत है इस बात की कि इंसान अपनी इसलाह करे, और ये सारी खूबियां अपने अंदर लाने की हमने सबने कोशिश करनी है अगर जिंदगी में कुछ करना है। एक जुमला बोलती हूँ, याद आ गया इस वक्त भी, यही असूल आप अपनी बच्चियों को शादी के मौके पे दे दें। घर बसने हैं तो यही असूल है, इदारे चलने हैं तो यही असूल है, सियासी लीडर बनना है तो यही है, और वो क्या है कि जुबान छोटी दिल बड़ा, ये असूल बना ले, हर महाज में कामयाब होंगे। जुबान छोटी दिल बड़ा, शौहर ने कुछ कहा, जुबान छोटी दिल बड़ा पी जाए, सास ने, बच्चों ने, मासी ने, मैंने नहीं बोलना। देखिए, दिल जितना बड़ा होता जाता है जुबान उतनी छोटी हो जाती है, और जिसका दिल छोटा है ना उसकी जुबान बड़ी लंबी होगी। हमारा हिसाब तो अल्लाह लेगा, पता नहीं हमारे साथ कल क्या बनना है। हम दूसरों की गलतियां नहीं छोड़ते और अपने आप को हमेशा रुखसते देते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि लोगों को इंसान समझो, बाज दफा दीन के नाम पे भी हम बड़े सख्त हो जाते हैं, ये गुनाहगार, ये काफिर, ये जहन्नमी, किसी में इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब किसी के कोई ऐसे मामले का जिक्र करें तो और आवाज दबा ले कि पता नहीं वो मेरे से कितना अच्छा हो। अच्छा, हम नबी सल्लम के बारे में क्या सोचते हैं, ओ फबीमा रहमत मिन अल्लाह लिंतलम, स्माइली, मुस्कुराते। अब आप देखिए कि इस किरदार को सामने लें तो तस्वर में क्या आता है कि अल्लाह के नबी ने कभी अपने साथियों को नहीं डांटा, कभी उनकी तरबियत नहीं की, यही आता है ना। और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है किसी के नरम होने का कि वो बंदा किसी को रोके ना, माँ बड़ी नरम है जी, बच्चा वो दीवार पे चढ़ गया, माँ कुछ नहीं कह रही, ये गलत है। आप नबी सल्लम का तरबियत का तरीका पढ़े, पूरी बुक आपको पढ़ाएंगे, जिंदगी रही नबी सल्लम का तरीका तालीम, इतनी मोटी बुक है बहसियत मुअल्लिम, इंशाल्लाह अगले कोर्स में पढ़ेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह के नबी इतनी सिची विची बर्दाश्त नहीं करते थे, अल्लाह के नबी तरबियत का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ये नहीं मतलब कि नरम हुए हैं तो आप लोगों की बुराइयों को ओवरलुक करो, करते थे, लेकिन अंदाज, और वही बात है कि एक वक्त पर डांटा है तो दूसरे वक्त में फिर गले से लगा लिया, दूसरों को डांट के खुद उसके लिए दुआ करने वाले हो गए। तो सीरत पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी खूबियां आपको और ज्यादा भी खुल के मिलेंगी, और यही इस वक्त हम सब की जरूरत है, क्योंकि जब थोड़ा सा नया सा दीन आता है ना तो बड़े सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल नए कपड़े की तरह, नया कपड़ा आता है तो कैसा हो जाता है, अकड़ा हुआ, और अगर पानी में डाल के उसको सुखाएं जरा बाहर तो यूं कड़क कड़क वो बन जाती है, फिर इस्त्री लगाए, पानी फेरे जरा करें तो फिर नरम होता है। नया नया दीन बंदे को बहुत सख्त कर देता है, सब गलत, ये भी गलत वो भी गलत। अच्छा, जो शख्स नया नया दीन पे आता है वो खुद अपने सोम में भी जरा नया नया जोश भी होता है तो दूसरों को भी वो बड़ा सख्त लगता है और वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जितना दीन घिसता जाता है, आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाता है ना, फिर आप नरम ही नरम है, फिर वो होरस में हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। फिर फौलाद तब बनता है जब कोई गलत काम होता है, आम हालात में वो हर वक्त रोब नहीं डाल रहा होता कि तुम जो ऐसे तुम ऐसे। आप कभी पढ़े अल्लाह के नबी के हाल क्या था कि सहाबा जब आपके पास बाहर होते थे, यानी जैसे मस्जिद नबवी थी, तो बात नहीं कर पाते थे आपसे, लेकिन जब किसी का आपसे वास्ता पड़ता तो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी से ज्यादा नरम मिजाज कोई बंदा नहीं था। हजरत जैद बिन हारिसा जो गुलाम थे आजाद करदा, तो उनके रिश्तेदार आके उनको लेने एक मौके पे, चचा बाप, अल्लाह के नबी ने कहा इनसे पूछ ले, जाना चाहें तो मैं रोकूंगा नहीं, बोलो भाई क्या ख्याल है, कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जो अल्लाह के नबी के साथ रह के मजा आ रहा है, मैं अपने सगे बाप और चचा के पास भी हो सकता है इतना खुश ना हूं। हजरत अनस कहा करते थे कि मैं 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत में रहा और आपने एक दफा भी मुझे किसी काम के ना करने पे डांटा भी नहीं। हमारा तो गुस्सा ही सर पे सवार होता है। और याद रखिए, जितने आप नरम होंगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कूल डाउन, रिलैक्स। और हम पहले ही जो सख्त है गुस्से में, थड़ थड़ लगे हुए, तो हम खुद को किल करेंगे ना। तो जो बंदा सख्त होता है ना, दूसरे ही नहीं उसकी वजह से मुश्किल में होते, वो खुद भी बड़ी मुश्किल में होता है। और अल्लाह के नबी ने जो इतने काम कर लिए एक वक्त में और फिर भी रिलैक्स, उसकी वजह आपकी ये नरमी और ये खूबियां थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको भी इस तरह का बना दे और बिल्कुल इसके ऊपर हम अल्लाह ताला के साथ मामला करें। यहाँ पे ये टॉपिक पूरा होता है।